एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसने हाल के वर्षों में काफी चर्चा बटोरी है, इम्बोलो एम्बियो का पहला उपन्यास बिहोल्ड द ड्रीमर्स।
हाँ, और ये वाकई एक खास किताब है। एम्बियो खुद कैमरून से अमेरिका आई हैं, तो उनके अपने अनुभव कहानी में एक अलग ही गहराई लाते हैं, है ना?
बिल्कुल, वो प्रामाणिकता महसूस होती है। ये 2016 में आए और आते ही इसने पेन फॉल्कनर अवार्ड जीता, ओपरा बुक क्लब में शामिल हुई, मतलब काफी पहचान मिली इसे।
और इसकी सेटिंग भी बहुत दिलचस्प है। कहानी हमें ले जाती है 2007-2008 के न्यूयॉर्क शहर में,
ठीक उस समय जब वो बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा था, लेमन ब्रदर्स वाला।
हाँ बिल्कुल, वो संकट आने से ठीक पहले का माहौल, थोड़ी उम्मीद थोड़ा डर। कहानी में दो परिवार है, एक तरफ ज़ोंगा परिवार, ज़ेंडे, नैनी और उनका बेटा लियोमी, कैमरून से आए अप्रवासी,
और दूसरी तरफ
एडवर्ड्स परिवार, क्लार्क एडवर्ड्स जो लेमन ब्रदर्स में बड़े अधिकारी हैं, उनकी पत्नी सिंडी, अमीर स्थापित अमेरिकी परिवार।
तो आज हम इसी उपन्यास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वो बड़े सवाल जो ये उठाती है, अमेरिकी सपना, क्लास, अप्रवासन, इन सब पर।
हाँ, तो कहानी शुरू होती है 2007 के पतझड़ में। हम मिलते हैं ज़ेंडे ज़ोंगा से, कैमरून के लिम्बे शहर से आया है, मेहनती है, इरादे पक्के हैं।
और सपना सपना वही, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। पत्नी नैनी है जो फार्मासिस्ट बनना चाहती है, और बेटा लियोमी
हार्लेम में रहते हैं।
उसके मन में एक बात शायद घर कर गई थी जो किसी ने कही थी, अमेरिका जाओ और तुम एक आदमी बनोगे।
ये बात थोड़ी अजीब है ना, जैसे अमेरिका जाने से ही आदमी बनता है, मतलब एक प्रदाता बनने का दबाव।
बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ वो जी रहा है कि अमेरिका में वो ये कर पाएगा, और फिर उसे एक मौका मिलता है।
क्लार्क एडवर्ड्स के ड्राइवर की नौकरी, हाँ, साल के $35,000, ये उस वक्त ज़ोंगा परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी, सोचिए जरा।
ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए जैसे अमेरिकी सपने की चाबी थी।
हाँ बिल्कुल, अब नैनी की पढ़ाई का खर्चा निकल सकता था, घर पैसे भेज सकते थे, जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ सकती थी।
और शुरू में तो एडवर्ड्स परिवार की वो शानो शौकत देखकर उनकी आंखें चौंधे आ गई होंगी, अपर ईस्ट साइड का पेंट हाउस, हैम्पटन का समर होम।
हाँ, वो दुनिया जिसका वो हिस्सा बनना चाहते थे, उसकी चमक उन्हें खींचती है, लेकिन यही से कहानी का असली तनाव शुरू होता है।
दो दुनियों का टकराव।
बिल्कुल, एक तरफ अप्रवासी सपने, दूसरी तरफ स्थापित अमीरी का खोखलापन, और ये टकराव 2008 का आर्थिक संकट आते आते और गहरा हो जाता है।
और यहीं वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद उपन्यास का दिल है, ये अमेरिकी सपना आखिर है क्या? क्या ये सच में मेहनत से मिलता है या सिर्फ एक धोखा है?
और अगर सपना है भी तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या ये आपके रिश्तों को, आपकी पहचान को ही बदल देता है?
ये सवाल और भी तीखे तब हो जाते हैं जब नैनी को एडवर्ड्स के हैम्पटन वाले घर में कुछ समय के लिए काम करने का मौका मिलता है।
हाँ, वहाँ वो पर्दे के पीछे की सच्चाई देखती है, क्लार्क और सिंडी के रिश्ते की कड़वाहट, उनके झगड़े, क्लार्क के फोन कॉल्स अपनी प्रेमिका को,
और उनके बेटे विंस की हालत भी देखती है।
हाँ, विंस जो इस पूरी पूंजीवादी दुनिया से तंग आ चुका है, वो तो भारत जाकर कुछ सार्थक खोजना चाहता है।
ये विरोधाभास नैनी को जरूर चौंकाता होगा कि जिनके पास सब कुछ है वो इतने दुखी क्यों हैं?
बिल्कुल, वही सवाल उसके मन में आता है, इनके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है, राज क्या है? खुशी का राज। यहीं से वो अमेरिकी सपने की चमक फीकी पड़ने लगती है।
और जिंदगी की वो लिमोजीन कार, वो एक प्रतीक बन जाती है ना?
हाँ, बहुत शक्तिशाली प्रतीक। वो उस कार में बैठकर अमीरों की दुनिया के इतने करीब है, उनकी बातें सुनता है, पर फिर भी हमेशा बाहर है, एक कांच की दीवार।
वो ड्राइवर है, पहिया उसके हाथ में है, पर असल में वो अदृश्य है, सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा।
इकमत्ता भी और अलगाव भी, अजीब है। और जैसे जैसे 2008 नजदीक आता है, ये अलगाव और खतरनाक लगने लगता है।
हाँ, क्योंकि आर्थिक संकट अब सिर्फ आहट नहीं रहा, वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, क्लार्क पर दबाव बढ़ रहा था, लेमन ब्रदर्स मुश्किल में था।
क्लार्क का तनाव, उसकी शराब पीने की आदत, घर का माहौल बिगड़ रहा था, और इसका असर ज़िंडे पे भी पड़ रहा था।
ज़िंडे की अपनी चिंताएं थीं, उसकी असाइलम की अर्जी का क्या होगा, कहीं परिवार समेत डिपोर्ट ना कर दिया जाए,
ये डर उसे खाए जा रहा था। और मालिक नौकर का रिश्ता भी तनावपूर्ण हो गया था, उसे समझ आ रहा था कि उसका भविष्य एक ऐसे आदमी पर टिका है जो खुद डूब रहा है।
यहीं पर क्लास और रेस का मुद्दा भी खुलकर सामने आता है। वो हमेशा द हेल्प मतलब मददगार की भूमिका में है।
हाँ, उनका पूरा जीवन उन अमीर गोरे मालिकों की दया पर निर्भर है। ये निर्भरता उन्हें कितना कमजोर बनाती है ये संकट में साफ दिखता है।
एमबीयू ये बहुत बारीकी से दिखाती हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ताकतवर और मजबूत होते जाते हैं और मार पड़ती है कमजोरों पर, खासकर झंडे जैसे अश्वेत अप्रवासियों पर।
वो लिमुजीन का कांच फिर याद आता है, वो दीवार जो उन्हें करीब तो लाती है पर कभी एक नहीं होने देती।
और फिर वो हो ही गया जिसका डर था।
सितंबर 2008, लेहमन ब्रदर्स दिवालिया। ये सिर्फ एक बैंक का डूबना नहीं था, ये पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिल जाना था।
न्यूयॉर्क तो जैसे भूकंप के केंद्र में था और इसका असर दोनों परिवारों पर कहर बनकर टूटा।
हाँ, क्लार्क एडवर्ड्स जो वॉल स्ट्रीट का बादशाह था, रातों रात सब खत्म, नौकरी गई, इज्जत गई, पैसा गया, उसकी पूरी पहचान ही जैसे छीन ली गई।
और इसका सीधा असर झंडे पर पड़ा।
बिल्कुल सीधा, क्लार्क गया तो झंडे की नौकरी भी गई, बस एक फोन कॉल और जोंगा परिवार का वो अमेरिकी सपना चकनाचूर।
आमदनी बंद, कर्जा बढ़ता हुआ और डिपोर्टेशन का खतरा सर पर, भयानक स्थिति।
इस दबाव में रिश्तों की असल परीक्षा होती है। एडवर्ड्स परिवार में तो पैसा भी उस खोखलेपन को भर नहीं पा रहा था, संकट ने उसे और उजागर कर दिया।
लेकिन जोंगा परिवार के लिए यह ज्यादा दर्दनाक था। गरीबी और डर उनके प्यार भरे रिश्ते को भी तोड़ने लगता है।
हाँ, झंडे का बदलना वो देखकर दुख होता है। वो उम्मीदों भरा पति अब डर और हताशा में घिरा एक चिड़चिड़ा इंसान बन जाता है।
और वो एक क्षण आता है जब वो गुस्से में नैनी पर हाथ उठा देता है। वो शायद कहानी का सबसे निचला पॉइंट है।
हाँ, वो दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव एक अच्छे इंसान को भी बदल सकता है, उससे वो बना सकता है जो वो कभी नहीं था।
इसी मुश्किल दौर में जब सब रास्ते बंद नजर आ रहे होते हैं, नैनी को सिंडी एडवर्ड्स के बारे में कुछ और पता चलता है।
हाँ, उसे सिंडी की नशे की लत और उसके अतीत के एक बहुत ही दर्दनाक राज का पता चलता है। ऐसा राज जो सिंडी की बची खुची इज्जत भी खत्म कर सकता था।
और सिंडी डर जाती है, उसे लगता है कि नैनी ये राज खोल देगी।
तो वो नैनी को चुप रहने के लिए बहुत बड़ी रकम ऑफर करती है, इतनी कि शायद जोंगा परिवार की सारी मुश्किलें हल हो जाएं।
और ये झंडे के लिए एक प्रलोभन बन जाता है।
हाँ, उसके मन में आता है कि शायद इसी राज के सहारे वो एडवर्ड्स को ब्लैकमेल कर सकता है, अपनी नौकरी वापस पा सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है। हताशा इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है।
ये नैतिकता का बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, कैसे राज ताकत का खेल बन जाते हैं। सिंडी का राज अचानक नैनी और झंडे को थोड़ी ताकत दे देता है, पर वो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?
झंडे तो शायद उस ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन नैनी, उसने सिंडी का दर्द बहुत करीब से देखा है, उसकी लाचारी। वो सिंडी में सिर्फ एक अमीर औरत नहीं देखती, एक दुखी इंसान देखती है, और वो पैसा ठुकरा देती है, वो अपनी ईमानदारी चुनती है।
ये नैनी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो अब सिर्फ एक सपना देखने वाली पत्नी नहीं है, वो अपनी शर्तों पर जीने वाली नैतिक रूप से मजबूत औरत बन गई है।
उसका ये ना कहना शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हाँ था, अपनी गरिमा के लिए।
इस सब के बाद जोंगा परिवार को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जिस अमेरिका का सपना वो देख रहे थे वो शायद था ही नहीं।
हाँ, नैनी के वो शब्द हम एक अच्छे देश में नहीं है झंडे, ये उनके मोहभंग को दिखाते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बुराई नहीं, उस पूरे वादे पर सवाल है।
और फिर उनकी असाइलम की अर्जी भी खारिज हो जाती है।
हाँ, अब कोई रास्ता नहीं बचता। तब वो एक फैसला लेते हैं, मुश्किल पर शायद सही।
वो अपनी अर्जी वापस ले लेते हैं और अमेरिका छोड़कर वापस लिम्बे कैमरून जाने का फैसला करते हैं।
कहानी का अंत हार जैसा नहीं लगता, बल्कि एक शांति है उसमें, जैसे इन्होंने अपने लिए सफलता और घर का मतलब बदल लिया है।
बिल्कुल, यहाँ घर का सवाल बहुत अहम हो जाता है। घर क्या है, जहाँ पैदा हुए या जहाँ सपने लेकर गए?
न्यूयॉर्क के अनुभवों ने अकेलेपन, सिस्टम की रुकावटों, अपनी जड़ों से कट जाने के एहसास ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया।
तो लिम्बे लौटना हार नहीं है, ये शायद अमेरिकी सपने के उस ठंडे वादे पर अपने समुदाय, अपनी संस्कृति को चुनना है, अपनी पहचान को वापस पाना है।
अगर हम पात्रों को देखें तो झंडे की यात्रा उम्मीद से शुरू होकर हताशा और फिर सपने पर सवाल उठाने तक जाती है, दिखाता है कि सिस्टम कैसे इंसान को तोड़ सकता है।
और नैनी, वो भी उम्मीद लेकर आती है, पर वो यथार्थ से टकराकर और मजबूत होती है। ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा नैतिक, वो परिस्थितियों से हारती नहीं, बल्कि अपने लिए नए मायने गढ़ती है।
क्लार्क एडवर्ड्स का पतन एक चेतावनी जैसा है। पैसे पर टिकी जिंदगी कितनी खोखली हो सकती है, एक तरह का ट्रेजिक हीरो।
और सिंडी का दुख दिखाता है कि बाहरी चमक अक्सर अंदर के जख्म छुपाती है। पैसा सुकून नहीं खरीद सकता। नेनी के साथ उसका रिश्ता ये भी दिखाता है कि इंसानियत कभी कभी वर्ग की दीवारें लांघ जाती है।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास अमेरिकी सपने के मिथक को तोड़ता है, उसकी कीमत पूछता है। ये सिर्फ अप्रवासियों की कहानी नहीं, ये पूंजीवाद, क्लास, रेस, इन सब पर एक तीखी नजर है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को हाशिए पर धकेल देता है। साथ ही ये रिश्तों की कहानी है, दबाव में कैसे रिश्ते बदलते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं।
और नैतिकता का सवाल तो है ही, मुश्किल वक्त में सही गलत चुनना कितना कठिन होता है।
एमबीयू के लिखने की शैली बहुत सीधी है। कहानी आगे बढ़ती जाती है और आप महसूस करते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तीसरा पुरुष नजरिया हमें झंडे और नैनी के मन में झांकने देता है।
हाँ, और वो प्रतीक, लिमोजीन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की धुंधली होती छवि, कांच की दीवारें, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
विडंबना भी है। जोंगा उस जिंदगी के लिए तरस रहे हैं जो एडवर्ड्स को दुखी कर रही है, और ये कि लेमन ब्रदर्स, जिसे खुद अप्रवासियों ने शुरू किया था, वही एक और अप्रवासी परिवार के सपने तोड़ देता है।
अंत में बिहोल्ड द ड्रीमर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता की वो पारंपरिक परिभाषाएं जो सिर्फ पैसे और पद पर टिकी हैं, वो शायद सच्ची खुशी नहीं देती।
और शायद सच्चा घर, सच्ची बिलोंगिंग, वो किसी जगह या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि माननीय गरिमा, रिश्तों और अपने समुदाय में मिलती है।
ये किताब एक मुश्किल सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या आज की दुनिया ऐसी ही है कि एक का सपना दूसरे के दुस्सप्न पर ही टिक सकता है? सोचने वाली बात है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।